राम। यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा 29 मई 1993 को साय लगभग 4 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम
पराकृत नवद बंधु परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण।
अपने स्वभाव सुधारने को सबसे बड़ा पुरुषार्थ बतलाया तो स्वभाव बिगड़ने का क्या कारण है और स्वभाव सुधारने के लिए क्या उपाय करना चाहिए?
अभिमान और स्वार्थ, ये दो बुद्धि रहेगी तब तो स्वार्थ सुधरना मुश्किल है। स्वार्थ बुद्धि अभिमान, ये खास व्यवहार बिगाड़ने की खास वस्तु है। अपने अभिमान का त्याग कर लो, स्वार्थ बुद्धि का त्याग कर दूसरों की हित बुद्धि हो जाए तो स्वभाव सुधर जाएगा, नहीं तो स्वभाव नहीं सुधरेगा, बिगड़ जाएगा। ये सर्वभूत हितेरता जो पद है बहुत ही दामी है। किसी के साथ बर्ताव हो केवल उसके हित के लिए ही हो। कभी किसी के साथ बर्ताव करे तो उसका हित कैसे हो, ऐसे सोच कर ही बर्ताव करे। जो बात करे तुम्हारे सब तो उसका स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा और अभिमान अपना रखेंगे। ये अच्छे अच्छे गुण है, उनको देवी संपत्ति कहा है। अभी वो शब्द सुन सूचे 26 लक्षण है, इसको देवी संपत्ति विमोषाय निबंधाया सुखी मता, तो देवी ही संपत्ति बताया है। यह देव संपत्त शब्द देवता का वचन नहीं है, देव है परमात्मा का वचन। जैसे मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो, या देव शब्द है, ये ईश्वर परमात्मा का वचन है, देवता का वचन नहीं है। तो दैवी संपत्ति मानो देव की, देव को प्राप्त करने की जो संपत्ति है, जिस संपत्ति से परमात्मा की प्राप्ति होती है वो दैवी संपत्ति है। 16 अध्याय 3 श्लोक 26 लक्षण, ये परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन है। राज दैवी संपत्ति है, तो ये गुण अपने में होते हैं तो गुणों को अपने न माने, अपना मानने से चीज अशुद्ध हो जाती है। ये है परमात्मा के गुण, देव के गुण है, व्यक्तिगत नहीं है। मैं सत्य बोलता हूँ तो मैं सत्यवादी हूँ या नहीं है, सत्य परमात्मा का स्वरूप है। अपन मैं को लेगा साथ में सत्य को अशुद्ध कर देते हैं। झूठ को बोले वो तो असत्य है ही, वो तो निकलती है। बना अपने में सत्य भाषण का भी अभिमान होता है तो अभिमान क्या होता है, वो अभिमान की छाया में दुर्गुण दुराचार रहते हैं। जैसे वो कहा था नरोप्याख्यान में कि बहे की छाया में कंजूर रहता है, ऐसे संस्कृति मूल शूल प्रदनाना सकल शोकदायक अभिमाना। सकल शोक, कोई शोक बाकी नहीं, चिंता कोई बाकी नहीं, उसका खास आश्रय अभिमान है। तो अच्छाई का अभिमान बुराई की जड़ है, ये याद कर लो। अपने में जो अच्छाई का अभिमान है वो बुराई की जड़ है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। देवी संपत्ति है सत्य भाषण, और उस सत्य भाषण का भी अभिमान आ जाता है, सच्चाई का अभिमान। तो अभिमान देवी संपत्ति का नाश करके आचरण संपत्ति पैदा करने वाला है। इसमें ये बड़े आश्चर्य की बात क्या है कि देवी संपत्ति का गुण उससे आचरण संपत्ति पैदा हो जाए, यह एक विनिक बात है। तो क्यों हो जाए कि आचरण संपत्ति से नहीं हुआ है, देवी संपत्ति से आचरण संपत्ति नहीं, देवी संपत्ति का अभिमान। इसमें एक मार्मिक बात है, देवी संपत्ति का अभिमान कब होता है कि जिसमें आंशिक अवगुण रहता है, सत्य बोलता हूं परंतु कहीं न कहीं असत्य बोलने में आता है, तब सत्य बोलने का अभिमान पैदा होता है। अगर सर्वथा ही सत्य बोले, कभी भी असत्य न, स्वप्न में भी असत्य न बोले, तो सत्य बोलने का अभिमान नहीं आएगा। असत्य बोलता है तब बोलता है मैं देव कैसा हूं, सत्य बोलता हूं, सच्ची सच्ची बातें कहता हूं, ऐसा अभिमान आता है। तो अभिमान आता है उसका कारण सत्य भाषण नहीं है, सत्य भाषण के साथ में जो असत्य भाषण है उससे अभिमान पैदा होता है। तो सत्य आंशिक होता है। देवी संपत्ति के आंशिक आश्रित संपत्ति आश्रित रहती है, और वो आश्रित आंशिक तो आयुष संपत्ति है वो बड़े अनर्थ करने वाली होती है। ऐसी बात इसमें शंका भी बोलो, बात उस समझ में नहीं है तो बोलो, ये बात है। तो अभिमान होता है और स्वार्थ बुद्धि होती है, वो सर्वथा सर्वथा देवी संपत्ति वाला नहीं होता, उसमें आज संपत्ति रहती है। देवी संपत्ति मोक्ष आए, मुक्ति कर दे तो मुक्ति वो नहीं करती है, शुद्ध देवी संपत्ति से मुक्ति हो जाती है एकदम। ऐसी बात है बिल्कुल।
स्त्री पुरुष दोनों विष्णु सहस्त्र नाम की व्याख्या लिखा हुआ, ये पाठ का होना चाहिए, पाठ कर सकते हैं क्या? इसमें तो व्याख्या
सब लिखा है विष्णु सहस्त्र नाम का। व्याख्या तो अपने पहले आजकल मिलती है कि नहीं, श्री शंकराचार्य जी की हुई विष्णु सहस्त्र नाम की व्याख्या अपने प्रेस में छपी है।
अपने छपी भाई जी, कर सकते हैं लिखा उन्होंने, हम कर सकते हैं क्या?
हाँ वो व्याख्या तो सुन लो, व्याख्या मैंने पढ़ो।
हाँ पढ़ने के मतलब
पढ़ो, उसमें क्या क्या नाम है, किस कारण से यह नाम हुआ है, उसका नाम का क्या अर्थ है, ऐसे पढ़ा जाए तो उसका बहुत विशेष महत्व है। देखो
तत्व जी लिखी वो वेद व्यास जी कृपा से लिखी है क्या? शेर जी ने जो तत्व चिंता में तत्व विवेचन लिखी है ये वेद व्यास जी कृपा से लिखी है क्या?
ये तो है ही सुनता हूँ मेरी कृपा ही। देखो कोई भी कुछ कविता करे कुछ भी लिखता है तो वेद व्यास जी महाराज का उत्कृष्ट है। वेद व्यास ने इसमें पुराण इतना लिखा है जिनमें कोई बाकी है नहीं, अभी नया कोई आविष्कार करे कि नई बात कहता हूँ तो मैं कहां से लाएगा, जासोत्सिष्ट है, व्यास जी का ही दुश्मन है। कितनी हो उनसे जोर जोर से विचार कर देंगे, मैंने ऐसा आविष्कार किया, ऐसा शब्द किया, ऐसा किया, तो कहां जाएगा वो व्यास जी महाराज की।
ये प्रश्न उनसे बारे में शंका हो, देवी संपत्ति तो सत्य है।
हाँ, हाँ, हाँ।
उसका तो भाव होना नहीं चाहिए। देवी संपत्ति सत्य है नहीं, उसका तो घटी नहीं चाहिए। अभी आंशिक आंसू आ जाओ, पूरी आंसू की आ जाती
है। पूरी आंसू का कारण हो जाती है, पूरी आंसू आ जाती नहीं है। आंशिक आंसू संपत्त अगारी अभिमान के कारण हो जाती है।
अभिमान से क्या देवी पूरी मिट जाएगी?
हाँ, अभिमान के आश्रय में सब आश्रय संपत्ति जाती है।
मिट जाएगी सब जाएगी
ना, वो मिटेंगे नहीं। देखो, सदगुण है, सदाचार है, इसके साथ सत्व लगता है, इसका नाश कभी नहीं होता। सदगुण सदाचारों का नाश कभी नहीं होता, ये सत्य रहते हैं। परंतु आंशिक असत साथ में लगाने से उस सत का अभिमान अपने में पैदा हो जाता है। असत का आश्रय न लिया जाए, सर्व का सत्य वर्णन किया जाए, तो सत्य का अभिमान नहीं होगा अपने भीतर। क्योंकि सत्य तो सामान्य परमात्मा का गुण है, समान व्यापक रूप है, उसमें सत्य क्या हुआ? अफीम बेचता है तो वो अधिकार होता है, वही बेचता है, ये नहीं बेच सकता। धान बाजरा जौ चना सब बेच सकते हैं, भाषा में ये नहीं बेच, सनातन धर्म बोल सकता, आर्य समाज नहीं बोल सकता, हिंदू बोल सकता, मुसलमान नहीं बोल सकता, मुसलमान बोल सकता, ईसाई नहीं बोल सकता, ऐसा है ही नहीं। सद्गुण सदाचार के ऊपर सबका अधिकार है, मात्र प्राणियों का, क्योंकि वो सद परमात्मा का गुण है और परमात्मा का अंश है सभी। उसमें सत्य बोलता हूं तो अभिमान कब होता है कि अपनी व्यक्तिगत मानता है कि मैं एक सत्यवादी हूं, मैं ऐसा बात हूं, मैं ऐसा हूं, ऐसा ये वो अभिमान होता है। तो वो अभिमान पैदा होता है सत्य भाषण का, तो उसके आश्रित भीतर में असत्य अंश कहीं है, नहीं तो सत्य भाषण का अभिमान नहीं हो सकता। हम यहां बैठे हैं, ख्याल करो एक बात बताओ, यहां बैठे हैं, आश्रम बनाया है, ऊपर पंखा चलता है, प्रकाश मिलता है, अवकाश मिलता है, सब कुछ मिलता है, परंतु किसी भाई बहन के मन में है इस स्थान का अभिमान होता है या कहिए गीता भवन मेरा है, ऐसा अभिमान होता है या क्यों नहीं होता? कि मन में जमी हुई बात है कि मेरा नहीं है। हम तो यहाँ सत्संग करते हैं, सत्संग के लिए हमारे को मिला है, ऐसे सामान्य गुण माने जाएंगे सत्य भाषा देवी संपत्ति के तो अभिमान नहीं होगा, और व्यक्तिगत माने जाएंगे तो अभिमान हो जाएगा। व्यक्तिगत एक कमरा मानते हैं कि मेरा है तो उसमें भी अभिमान हो जाता है। है थोड़ी दिन के लिए पर तो भी उसमें मेरा है ऐसा जहां किया वहां अभिमान हो जाता है। तो देवी संपत्ति सामान्य गुण है सबके, पशु पक्षी मनुष्य कोई क्यों हो किस जाति का, वो भगवान का गुण है, देवी संपत्ति है, देव परमात्मा की संपत्ति है, तो देव इस परमात्मा की संपत्ति पर सबका अधिकार है। तो नई बात क्या थी तुम सत्य बोलते हो, क्या नई बात क्या थी? और सत्य पे सबका अधिकार है, तो मैंने कुछ नई बात नहीं की तो अभिमान कैसे होगा? हम गीता भवन में बैठे हैं, तो क्या नया गीता भवन आपने बनाया है? आपका व्यक्तिगत है? व्यक्तिगत नहीं है तो इसका अभिमान पैदा होगा क्या कि मेरा ये भवन है? तो जितने सद्गुण सदाचार है वे सबके सब परमात्मा के हैं। अपने को अब भगवान की कृपा का पात्र मानना चाहिए कि प्रभु ने कृपा करके और ये देवी संपत्ति गुण दिए है, ऐसा मानना चाहिए। हमारे ये ठेका नहीं ना, जैसे अपनी माँ ठेका ले लिया, भांग का ठेका ले लिया, किसी वस्तु का ठेका ले लिया, तो हम ही बेच सकते हैं, आप नहीं बेच सकते। ऐसे सत्य का कोई ठेका ले सकता है? मैं सत्य नहीं बोल सकता हूँ, आप नहीं बोल सकते। अभय हम ये अभय है जो मेरे ठेका, मैं ही अभय हो सकता हूँ, आप अभय नहीं हो सकते, ऐसे कह सकता कोई? सत्सन शुद्धि अंतकरण की शुद्धि ये मेरी हो गई, आपकी नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। ज्ञान योग व्यवस्थित परमात्म ज्ञान के जो स्थिति है इसको मेरी है, ऐसा नहीं कह सकते। ऐसे अहिंसा है, दानम दमस्त यज्ञ स्वाध्याय तप आदि अहिंसा सत्यम अक्रोध शांति दया भूतेशु अलोलुप्तो मार्दो शी असाफलम, ये 26 लक्षण है। ये किसी एक व्यक्ति के नहीं है, एक व्यक्ति के हो गए तो दूसरा व्यक्ति इसको नहीं पालन कर सकेगा। एक सामान्य गुण है, एक विशेष है। जैसे पुरुष और स्त्री ये परमात्मा के रचित है, पर तुझे माँ है, बेटी है, ये बहन है, ये मेरी भौजाई है, चाची है, ये ताई है, ये मामी है, ये नानी है, ये मनुष्य बनाई हुई है। इस वास्ते किसी की नानी है तो किसी की मामी है तो किसी की माँ है तो किसी की बेटी है। पति जो कहता है कि मेरी स्त्री है, ये अपना अधिकार जमाता है, ये गलती है। क्या आपकी स्त्री है किसी की माँ नहीं है क्या? ये किसी की बहन नहीं है क्या? किसी की बेटी नहीं है क्या? ये तो आप अभिमान कैसे जमाते हो? आप जो अपनी स्त्री मानते हो, मेरी स्त्री, इसका अर्थ है कि स्त्री का पालन पोषण करना आपकी जिम्मेवारी है, आपकी ही जिम्मेवारी है। इसका पालन पोषण करना, इसको सुरक्षित रखना, इसको चित्त को प्रसन्न रखना, ये आपका धर्म है, ये कर्तव्य है। इतना नहीं आपकी स्त्री है, कब्जा करने के लिए नहीं है। क्या आपकी स्त्री किसी की बेटी नहीं है क्या? क्या किसी की बहन नहीं है? किसी की माँ नहीं है क्या? वो किसी की चाची ताई नहीं है क्या? किसी की मामी किसी की नानी नहीं है क्या? तो आप स्त्री मानकर अभिमान करते हो मेरी स्त्री है। तो मेरी स्त्री है तो तुम इसका पालन पोषण करो, रक्षा करो, इसके लिए तुम्हारी है, कब्जा करो, ये अनुचित बात है। तो कब्जा करना है ना, ये मनुष्य की बनाई हुई सृष्टि है और यही पतन करती है। परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि पतन नहीं करती, इसमें कोई शंका हो तो बोलो भाई बताओ। ये अपनी बनाई हुई है, तो अपनी बनाई का अर्थ है कि उसकी सेवा करना, सुख पहुंचाना, आराम देना, उसको किसी तरह का कष्ट न हो, इसके लिए आपकी स्त्री है, पर कब्जा करने के लिए नहीं है। ये स्त्री का धर्म है कि एक पति के ही आश्रित है, पति के ही मन काम रहा है, पति के सिवाय कोई किसी के ही वो आश्रित नहीं, केवल पति की है। तो ये उसका कर्तव्य स्त्री का है, पुरुष का नहीं है कि तुम मेरी स्त्री हो तो किसी की माँ नहीं बन सकती, किसी की بہن نہیں بن سکتی, کسی کی بیٹی نہیں ہے. سمجھ کیوں سمجھ سی بات سمجھ میں آیا کہ نہیں نہیں آ تو پوچھو. اس طرح سے دیوی سمپتی کے گن ہے وہ کسی کے ویکتی کے نہیں ہے. کوئی ٹھیکہ لے رہے کہ ستیہ واسا میں کرتا ہوں تم نہیں کر سکتے, ایسا نہیں کہہ سکتے. یہ جتنے اچھے اچھے گن ہیں دیاگ سما اداس داسن تیاگ آدی جو چاہے اسے جانی کرو. رام گڑی چورے پڑی سب کوئی کھیل ہوا ہے, دعوی نہیں سمپتا جیت سو لے گا. دعوی دور کر مرد دنکات دادو دعوی دور کر مرد دنکات کئی کئی سودا کر گئے. یہ تو پنساری کی ہاتھ تیز ہے اس میں, یہ دعوی نہیں. تو ابھیمان کب ہوتا ہے کہ جب کسی چیز پر کسی برن پر کسی آشرم پر وہ اپنے کو بڑا مان لیتا ہے تو اس سے ویوہار بگڑتا ہے, اسے سدھار نہیں دیا. پرکرتی اس کی شدھ نہیں ہوتی, نرم نہیں بنتی جلدی. میں براہمن ہوں ایسے براہمن پن کا ابھیمان ہے. تو ابھیمان پتہ کرنے والا میں براہمن ہوں تو براہمن نہ کر سکے وہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں, یہ سدوپیوگ ہے. اور میں براہمن ہوں بڑا ہوں, بڑا نام براہمن ہوں, گرو میں گرو ہوں, یہ دروپیوگ ہے. اپنا اہنکار ہے کرتے بھی پالن کی تتپرتا میں, نہ کہ ابھیمان میں. تو سب اپنے سوبھاؤ کا سدھار کب ہوگا؟ جو ابھیمان اور سوارتھ بدھی کا تیاگ کر کرے گا تو ابھیمان نہیں ہوگا. یہ بات
ہے. تامسی دھتی کیسے چھٹے؟ دھتیا یا دھارے کے من تامسی دھتی یا تو سپنا یا تو
دیکھو تامسی درشی میں ساتوکی اور درشی میں دھاریت آیا ہے, تامسی میں دھاریت نہیں آیا ہے. اس سے میں ومنچتی آیا ہے, یہ تینوں دھاریت آنا چاہیے. تو ارتھ کیا ہوا؟ تم سے درتی دھارن کرنی نہیں پڑتی, ستے تمہارے میں ہے وہ گھومے راستے تامسی تو دھارن کرنی پڑتی ہے. اور یہ ستے ہے پشوؤں میں پکشیوں میں برکشوں میں, ان میں نیند آتی ہے. یا سوپنم بھائیم شوکم پرسادم مد نہیں ہوتا, میں بھی منتتی چھوڑتا نہیں. یہ بات ہے, یہ دھاری تو نہیں دیتے جایا دھارے تھے من پران جی کیا یوگ اب وچار تلسی صاحب کا ساتھ ہوئی. یا تو دھرم کام ارفان دھارے تھے دتیا دھارے تھے اتنا پرسنگے فلا کامسی, یہ لالسی ہے. تامسی تو سوتہ ہے, اس کو دور کرنا ہے. ہر ایک میں اتنی بات نہیں آئی ہے جتنی دھرتے میں آئی ہے. درتی تامسی چھوڑنے میں زور پڑتا ہے, راجسی ہو جاتی ہے. ساتوی کی درتی اور درتی میں مشکل ہوتی ہے, یہ ادیوگ سے پراپت کرتی ہے. جو ہستے اپنے کو دیوی سمپتی گن لانا چاہیے ساتوی گن, اور وہ بھگوان کا آشرے لے کر اپنے کو جرا مرن موکش آیو مام آسر چیتنتی ہے. جرا مرن سے مکتی پانے کے لیے بھگوان کا آشرے لے کر تن کرتے ہیں, وہ پھر مکو جانتے ہیں. देखो कितनी बुरी बात है, जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित, ये संदेह आश्रित क्यों कहा, अपने में नहीं है कि मैं जरा मरण मुक्ति प्राप्त कर लूंगा, मैं अपना कल्याण कर लूंगा। तो कल्याण के गुण साधन करना है, उसमें मैं पड़ा नहीं होगा, माम आश्रित भगवान के चरणों का आश्रय लेकर दर्शन करो, प्रभु की कृपा से होगा, कृपा को साथ मानो, भगवान का आश्रय लेकर चलोगे तो दुर्गुण दुराचार स्वतः दूर होंगे, सदगुण सदाचार आप से आप आ जाएंगे, तो अपने वृत्तियों का अपने स्वभाव का सुधार बन जाएगा। और साथ में अहम लगा दोगे तो बिगाड़ हो जाएगा।
समता में स्थिति कैसे हो,
समता में स्थिति स्वतः है, विषमता आपने बनाई है। समोहम सर्वभूतेषु, भगवान के सब प्राणियों में मैं सम हूँ, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे उत्पन्न किए हुए हैं सब मेरे को प्यारे हैं, तो भगवान की समान कृपा है, भगवान व्यापक समान है और सूर्य सबके हैं, दुष्ट से दुष्ट के भी भगवान सूर्य है, सज्जन से सज्जन के भगवान सूर्य है, सूर्य मतलब उनकी उपकार की इच्छा त्याग करके अपनी तरफ से केवल कृपा ही कृपा करते रहे वो सूर्य कहलाता है, और उपकार के बदले उपकार करता है वो मित्र कहलाता है। तो भगवान भी कहते हैं सूर्यम स्वरूप होता नाम, और संत महात्माओं के लिए कहा था सोलह सर्वदे ही नाम, सब शरीर धारी होंगे वो सूर्य होते हैं, ये बात मात्र शरीर धारी सूर्य होते हैं, बैर करे तो स्नेह करे तो सब करे वो सबके सूर्य होते हैं। रावण के प्रसंग में बताया है ना कि विष्णु के लात मारी तो कहते आप पिता के समान भले ही हो मारो, राम भजे हित हो तुम्हारा, तुम्हारा हित तो राम भजन से है, उसके हित की बात ही क्या करे, तो उमा संत की है बढ़ाई, मंद कर दो करे भलाई, भलाई भलाई करते ही मन करते ही स्वभाव में ऐसी बात होती है। तो सब जग के उपकार हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक भगवान और भगवान के सेवक, ये बिना स्वार्थ सबका हित करने वाले होते अपने स्वार्थ बुद्धि में, ये बात तुम लोग। समता क्या है कि समता स्वतः सिद्ध है, विषमता आप पक्षपात कर रहे हो, ये हिंदू है ये मुसलमान है, ये स्त्री है पुरुष है, ये ब्राह्मण है क्षत्रिय है वैश्य है शूद्र है, ये कर्तव्य पालन करने के लिए चार वर्ण है, अभिमान के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, अपने को बड़ा छोटा बनाने के लिए नहीं। घर में पांच सात आदमी हो, कोई रसोई बनाता है, कोई वस्त्र जुटाता है, कोई बर्तन ठीक करता है, कोई सवार बाजार से सौदा लाते हैं, तो अपना अपना कर्तव्य करने के लिए अलग अलग है, अभिमान करने के लिए नहीं कि मैं पालन पोषण करता हूँ, पालन पोषण नहीं, तुम अपना पांचवी आया काम तुम करते हो, दूसरों को थे जो काम करते अलग अलग, ऐसा मानने क्षमता होती है, और अभिमान और स्वार्थ बुद्धि से जो क्षमता बिगड़ती है विषमता आती है पक्षपात हो जाता है। ये माया रसोई पुरुष है ना, उसमें भी अपने बेटे को और अपने पति को पुरुष है, उसमें कुछ न कुछ थोड़ी सी विषमता कर देंगे, दूसरों पर वही مالکوں کے لیے چاول دوسرے بنتے ہیں, نوکروں کے لیے چاول دوسرے بنتے ہیں, اس کے لیے صحت اور بہت بنتا ہے. تو ان مالکوں کے لیے بنتا ہے, ان سے تھوڑا حصہ لے لو تو سب کے نوکروں سے اونچا بیچ کا لے لو, سب کے لیے ٹھیک ہو جائے. تو یہ وشمتا وش ہے, سمتا امرت ہے, سب کا ہت ہو, اپنے سوارتھ کا تیاگ اور سب کی ہت بدھی ہونے سے یہ آتا ہے, سمتا آتی ہے. جہاں سوارتھ بدھی ممتا آدی آگے آ جاتی ہے وہاں دونوں اثر آ جاتے ہیں. میرے ممو میرے اہنکار ہے, ممتا نہیں ابھیمان نہیں ہو تب ٹھیک ہوتا ہے. اونچے سے اونچے گن بھی ابھیمان سے دوشت ہو جاتے ہیں. میں پنڈت ہوں, میں سمجھدار ہوں, میں پڑھا لکھا ہوں, وہ دوشت ہو جاتا. جہاں اہنکار آیا وہ دوشت ہو جاتا. جیسے میں جیسے چھو گئے تو پھر تم سن اشد ہو گئے. ایک کتھا ایک کہانی سنی ہے کاشی جی میں. کاشی جی میں اچھے پنڈت سے کتھا سنی ہوئی ہے, سچی ہے گھٹنا نہیں بنی اس کا ہمیں پتہ نہیں, سنی ہوئی بات ہے. اچھے پنڈت تھے, بڑے سداچاری سدگوڑی. تو وہ اپنا سنان کر گنگا جی سے آ رہے تھے تو سامنے ایک مہترانی ملی, مہترانی. تو مہترانی ملی تو وہ بنا دی کپڑا اپنا سکھا رہے تھے تو مہترانی چھو گیا. ٹھیک نہیں بولتی بگڑنے لگتی ہے, چھو گیا میرا کپڑا تیرا چھو گیا. تو وہ بولی کہ پنڈت جی آپ پستکوں دیکھو, آپ کی ہماری ایک گتی ہے کاشی مردان مکتی, آپ نے پوتی میں کیا لکھی ہے پڑھو. یہ وہ چھوٹا بڑا نہیں ہے, سب کی مکتی ہوتی ہے. جو کاشی میں مر جائے منڈوک متسیا کرمیوں بھی کاشیام تکتوا شریرم شیو آپ نے مندی منڈو مینڈک مت اور کیڑا منڈو کو مرسیا کرمیوں کی کاشیام چرسوا شریرم شیوں آپ نے منتی. تو آپ کی ہماری گتی ایک ہونے والی ہے, کیا مجاز کرتے ہو؟ مہاراج لگ گئی جات پسکے دیکھی بات ٹھیک ہوئی. تو ٹھیک کہتی گتی تو ایک ہی ہوگی, اب آپ اسے براہمن مان لو چاہے ماتن مان لو پھر کیا پڑا, ایک گتی ہوگی. تو مہاراج نے دیکھا کہ ہم کاشی میں نہیں رہیں گے, جہاں نائے نہیں ہے میتری کی وہی گتی ہماری وہی گتی, یہ کوئی حساب نہیں ہے, الگ حساب نہیں ہے. تو اپنے پنڈت بڑے تیاگی تھے, ودوان تھے, جو سامان تو زیادہ تھا نہیں, کاشی میں نہیں رہے. باہر نکلنے سے ماتا جی ملی, ایک ماتا جی ملی گول برن سفید بال, اور مہاراج سے پرنام کیا اور پوچھا کہ پنڈت جی مہاراج کہاں جا رہے ہیں؟ کہتے کہاں کیا جا رہے ہیں, کاشی میں نہیں رہیں گے. کہاں جانے کا وچار نہیں ہے, جہاں ہماری مرضی ہو جائیں گے, اور کاشی میں نہیں رہنا. تو بولی مہاراج کاشی سے کیا اپرادھ ہو گیا, ایسے سنیمی پنڈت آپ کاشی کا تیاگ کرتے ہو تو کاشی سے کیا اپرادھ بڑا آپ کا, جسے آپ سوتے ہو اپرادھ کیا بنا گئے؟ میں تو نہیں بتلا لیجیے پنڈت کی ایک ہی گتی ہوتی ہے, کوئی حساب ہی نہیں, کتنا سنیمی ہے, ودیا پڑھے ہوئے ہیں, भजन सुमन करते हैं, रात दिन शादी में लगे हैं। अरे वो मेला बुआती है, खाने पीने कोई पड़वा ही नहीं, ऐसा खाती पीती है। तो ऐसे न्याय नहीं है वहां, हम नहीं देखते, हम तो जाते हैं। कहते महाराज ये तो आपने पढ़ा, पर ये नहीं पढ़ा है कि पापी और पुण्यात्मा हो सबकी मुक्ति होती है, पर पापों का फल भोगे बिना नहीं। तो पापों का फल भोगने के लिए भैरव यातना है, उसको हम देखो कहाँ है। तो सही है, तो भैरव यातना में दुख भोगाया जाता है, जितने पाप है वो पापों का फल दे करके और वो दुख भोगाया जाता है, फिर से मुक्ति होती है। अगर शुद्ध होते हैं उनकी सीधी मुक्ति हो जाती है। तो न्याय नहीं है, ऐसी बात नहीं है महाराज। सब कर्मों का फल मिलता है, नरकों की तरह नहीं है पापों का फल भोग फिर जन्म मरने चालू। वो भैरव यात्रा का फल भोगने के बाद उनकी मुक्ति होती है। भैरव यात्रा का कष्ट नरकों से भी ज्यादा होता है, बड़ा भारी भूषण कष्ट होता है, बहुत बड़े भारी पापों का फल भोगाया जाता है, तो बड़ी त्रास ली जाती है। इस वास्ते बात नहीं है। तो माता जी आप कौन हो, मैं काशी अधिष्ठाती देवता हूँ, आप जैसे संत काशी जीवन चले जाए काशी से, तो काशी का क्या महत्व रहेगा। काशी की महिमा आप लोगों से है, आप लोग चले जाए तो मेरा विचार है कि आप अपना चाहे कृपा कर काशी में मिला। अच्छा माता जी रहेगा, माता जी ने कह दिया हम रहेंगे, तो ये बात है। तो गति एक होने वाली है, पर एक होने में भी बीच में फर्क है। ऐसे क्षमता है ना, तो समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्योस्तु जाती है। भगवान सम है, सम बरोबर है, मैंने वो मैत्र हो चाहे महात्मा हो, सत्यों से जीवन मुक्त हो और परमात्मा का प्रेमी हो, दुष्ट और कसाई और हत्यारा हो, परमात्मा सब में बरोबर रहते। और परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का उपयोग, परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि का उपयोग सबके लिए खुला होता है। ऐसा नहीं दुष्टों की प्यास जल में बुझाए, अच्छे सज्जनों की प्यास तो जल बुझा देगी, पर कसाई होगा पापी होगा उसकी जल प्यास नहीं बुझाए, ऐसा नहीं है। भगवान की रचना की हुई पृथ्वी, ऐसा नहीं भी ब्राह्मण तो रह सकते हैं, दुष्ट इस पृथ्वी पर नहीं रह सकते। हवा है वो श्वास लेने के लिए सबके लिए खुली है, बोले पापी से पापी हो, सज्जन से सज्जन हो, कोई चार हो, सबके लिए हवा खुली, श्वास ले। अन्न है, जल है, हवा है, आकाश है, पृथ्वी है, ये परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि सबके ऊपर समान रक्षा करती है। तो ये भगवान की क्षमता है। अब वे समान होते हुए भी भगवान के भी पक्षपात है कि वे समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय, ये भजन्ति तु माम भक्त्या, परंतु भक्ति से मेरा भजन करते हैं तो मैते हुए मेरे में तेषु चापि, उनमें मैं हूं। यह विशेषता है, तो विशेषता पक्षपात हो गया। पक्षपात नहीं है, ये कपड़ा ऐसा सामान सब जगह है, पर जहां से ऐसे उधर जाकर दूरा हो ही जाएगा, सब में सामानों पर वे भजन करे तो मेरे मिश्रता आ जाती है भाई। अब भजन करे न करे समान कहना, ये है हिसाब का दुरुपयोग, हिसाब ठीक नहीं। तो जो भजन करे न करे बरोबर ही हो, ऐसे कैसे होगा। गुण खड़े एक अनुभाव बुझाना ब्योरा नहीं, नगरी में नहीं न्याव रोई भरी ले जा दिया। گل کھڑا ایک اڑ بھا گل خریدو جائے کھڑ جو پشو کھاتے ہیں تیل نکالنے کے بعد جو وہ لیتا ہے کچرا اس کا نام کھڑ ہے تیل کی کھڑ ہوتی ہے تیلوں کی کھڑ ہوتی ہے سرسوں کی کھڑ ہوتی ہے جس کا تیل نکالا جائے وہ پیچھے کھڑ رہ جاتی ہے تو گڑ اتنا میٹھا اچھا ان کا کھڑا ایک ہی بھاؤ ہے گڑ کھڑا ایک اڑ بھاؤ بستان کا بیڑا نہیں وسطو سبھی کیا کیا ہے اس کو کوئی حساب ہی نہیں ہے ایسے نگری میں نہیں آؤ نگری میں کوئی وسو کوئی نیائے نہیں کوئی انصاف نہیں ہے تو سبھی بھبھی لگا دے اس نگری میں کیا فائدہ جنگل میں بیٹھے لو اپنے تو یہ ایک بات نہیں ہے الگ فرق ہونا چاہیے آج کل آج میں سنی میں پوری اور مٹھائی ایک بھاؤ ہی ایک
گیتا بورڈ کی دکان میں ہی ہے
ہاں بولو پوری دور ہے مٹھائی لو تو ایک تیاگ سے کرے واپس پیاری ہے اب گیتا گیتا بھون سب کو سہولت دینے کے لیے کرے بھاؤ کیا ہے تیاگ ہے نا تو وہاں دوست نہیں آتا راگ ہوتا ہے وہاں پکش پات آتا ہے لاب ہو جائے سب کا ہت ہو جائے بولو اپنی گیتا کی دکان میں چاہے جل میں خریدو چاہے پوری خریدو بھجیا لے لو بولے ایک ہی سال ایک راجا تھے ان کے گڑ کھڑے گن ویسے ہی ہوتا تھا تو خوب لوگ مار کھاتے تو گرو اور چیلا دونوں وہاں پہنچے تو مہاراج بہت بڑھیا بڑھیا مٹھائیاں ملے بڑی بڑی چیزیں ملے پر بھاو ایک ہی رہے تو گرو جی نے کہا رے اپنے چلو کہ مہاراج میرا تو یہیں رہنے کا من کرتا ہے بہت مال ملتا ہے آپ کا دارو تو بھائی تیری مرضی پر کوئی آفت آ جانا تو میرے کو یاد کر لینا ٹھیک ہے مہاراج گرو جی چلے گئے وہ کھانے پینے لگا ستسنگ وہاں مول سے ہوئے ستسنگ کراوے سیاح پروش بہت آوے ستسنگ ہو رہا تھا اس شہر میں ایک دن راتری میں چور ہے جو پیچھے سے پینٹ توڑ کر کے اور چوری کے لیے دھرے تو بھینٹ توڑی بھینٹ سے گر گئی تو چور مر گئے چار آدمی مر گئے چار آدمی مر گئے تو سرکار میں پہنچا کہ چار آدمی مر گئے کس کے امو سیٹھ کے حویلی کی وہ دیوار تھی اس میں مر گئے تو پکڑو اس شیٹ کو چار آدمی مر گئے تمہاری دیوار سے یہ تمہارا انجام ہے تم مکان بڑھیا کیوں نہیں بنایا یہ تو نہیں کیوں مرتی تو اس میں پورا شیٹ کو لار گراس آ کے تمہارے قید کریں گے تو دیں گے پھانسی چار آدمی مر گئے پھانسی دیں گے تمہارے کو اس نے کہا تھا یہ بھیت بنانا میرا دوست نہیں ہے بھیت تو جو کاریگر ہے راج ہے جو بھی سنتے ان کا دوست ہے میں کیا کروں میں تو پیسے دے دیا بنا دو بھائی تم کو بلائے کہ تم نے ایسی بھیت کیوں بنائی جس میں آدمی مر جائے ایسی بناتے ہیں تمہارے کو پھانسی دیں گے وہ دیں گے سا ہم کیا کریں یہ گارا بناتے ہوئے نا ہے نا جو پانی ڈال کر وہ گارا ڈھیلا بنا دیا اس واسطے ہماری پیچھے ایسی رہ گئی تو بلاؤ اس کو گارا بنانے والا بلایا بلا کر تم ایسا گارا بناتے ہو چار آدمی مر گئے تمہارے اوپر سے لے گئے اس میں کہا تھا پانچ دو گے تو ہم کیا کریں سر, یہ پانی ڈالنے والا تھا نا پخار لانے والا, اس نے جل پانی ڈال دیا تو گیلا بن گیا, ہم کیا کریں سر, ہمارا دوست ہو رہی ہے, ہم تو جتنا پانی ڈالے اس سب بنا دیں, تو بلا وہ پانی بند ڈھولنے والے اس کو بلایا کہ آدمی چار بن گئے اب تمہارے کو پانچ ہی کہیں گے کہ تم ایسے کرے پانی کیوں ڈال دیا تھا, تو صاحب پانی تو گر گیا, کیوں گر گیا, کارن کیا تھا, کہتے ستسنگ میں گئی ہوں استریاں آ رہی تھی تو میری درشٹی استریوں کی طرف چلی گئی, اس بات استریوں کی طرف چلی تو پانی زیادہ گر گیا, میں نے خیال نہیں رکھا, کہتے لو استریوں کو پکڑ کر پھانسی دے گئی, تمہارے کار نہیں مر گئے, چار آدمی مر گئے, استریوں کو بلایا چونکہ تم کیوں گئی وہاں, جسے دیکھو چار آدمی مر گئے, وہ کہا سا ہم تو ستسنگ میں گئی تھی, کر گیا وہ بابا جی, اب بابا جی بیٹی تم یہاں استریوں کو بلاتے ہو, مجھے کہاں سے چار آدمی مر گئے, وہ پھانسی تمہارے کو لے گئے, اس آپ کیا کریں, کیا کرو گے, تمہارے پھانسی دیں گے, چار آدمی کی ہتیا ہو گئی, تمہارے یہاں آنے سے یہ بلائی تو نہیں, وہ استری جاتی بیٹھے پڑ گئی, پانی چلا گر گیا, گیلا ہو گیا, سب یہ بات تم کاروں سے ہو گئی, اب بابا جی کس کو بتا رہے, پھانسی کا حکم ہو گیا, آپ کو دس منٹ پر پھانسی دے دی جائے, تب یہ گرو جی کو یاد کہ مہاراج کیا کروں تو پھانسی ہونے والی ہے, تو گرو جی بڑے سنت تھے, آگے آگے کیا بات ہے کہ مہاراج پھانسی کا حکم ہو گیا, ہم نے کوئی حکم نہیں کیا, کچھ نہیں, میں تو ستسنگ کراتا تھا, اب ستسنگ میں استریاں آ جائے پولیس آ جائے میں تھوڑے برا کروں, اجگار سے مر گئے تو تمہاری کوئی بات نہیں, تم میرے کو بلا لے اب ٹھیک, کوئی بات نہیں, اب سب پھانسی کا حکم ہوا, تو پھانسی کا حکم ہے تو پھانسی میں پہنچ گئے دونوں پہنچے اور دونوں کہنے لگے کہ پھانسی تیرے کو ہی ہے, تو چلا ہے, میں گرو ہوں, میں چلوں گا پھانسی, تو چلنے والوں کو میرے سے پہلے تیرے کیسے پھانسی ہو, میں چلوں گا, وہ کیسا پھانسی حکم میرے کو, میں چلوں گا, وہ گرو جی کہ میں چلوں گا, میں گرو ہوں, سمجھے تیرا کا تھوڑا لگتا ہے پہلے پہلے میرا حق لگتا ہے, گھر میں لگے راجا تک پہنچی بات کہ مہاراج میں تو گرو سے لڑتے ہیں کہ میں پھانسی چلوں گا, میں چلوں گا, راجا پہنچے بات کیا ہے, کہ سر یہ چیلا کہتا ہے میں پھانسی چلوں گا, میں ہوں گرو, گرو بیٹھا رہے چلا چل جائے پھانسی کیوں, اسی میں چلوں گا, وہ کہتا میرے کو پھانسی ہو میں چلوں گا, تو ابھی کیا ہے کہ ابھی مہاراج پھانسی پڑھنے میں مکتی ہوتی ہے, کلیان ہوتا ہے, اس بات سے تو بولے چلو پھانسی میرے باپ کی, تو دور جاؤ یہاں سے, میں چلوں گا, تم کرنے والے کون, پھانسی تمہاری ہے, آگے چلائے گا تو یہ بدلا کر کھل کر ایک موج کریں گے نا جی, یہ موج اچھی نہیں ہے, چلو گا بدلا بتا دیا, ایسا گاؤں نگری میں نہیں نیا, کوئی نیا انصاف ہے, یہ تو روئی بنی لگا, ہاں بتاؤ اور بولو,
برہمچری کے پالن کے کیا لابھ ہے, برہمچری کا پالن کیسے کرنا چاہیے,
برہمچری کا پالن اپنی برتیوں کو ٹھیک رکھا, اور اس میں مکھ کارن ہے ستسنگ, اچھا سنگ ہونے سے برہمچری کا پالن سگمتا سے ہوتا ہے, اور سنگ اچھا نہ ملنے سے اس میں بڑی کٹھنتا ہوتی ہے, اچھا سنگ کرو, کھان پان آدی کا بھی ٹھیک خیال رکھو, और अच्छे संग में जाओ, जा कहीं खड़बड़ी मचे तो अच्छे संग में से अच्छे महात्माओं के पास चले जाओ। ये बात एकदम ठीक है, अच्छे पुरुषों के पास रहने से मृत्यु में शांति सोते रहती, स्वाभाविक अपने उद्योग नहीं करना पड़ता, केवल उनके पास बैठे रहो, बैठ रहने मात्र से क्या विषय चलता है क्या नहीं इसी नहीं, केवल उनके पास रहने से मृत्यु सदा शांत रहती है। तो ऐसे संतों का संग करो।
लाभ क्या बन जाए?
बिल्कुल चाहिए परमात्मा प्राप्ति हो जाए, बताए नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं भीष्म जी महाराज की तरह। भीष्म जी का लड़का नहीं हुआ तो दुनिया सब तर्पण करती आज पिता भीष्म तो सब लड़के हो जाते उसी है। इसमें पता अपना हाथों में हो गया
आप सुना दो कुछ थोड़ा।
मैं क्या बता दू, मैं तो ये बता दू सत्य का पालन करो है। सत्य के शरण से मुक्ति एक पुस्तक है, सेठों के लिखी होगी सत्य के शरण से मुक्ति, 8 बातें लिखी है उसमें। सत्य भाषण करने वाले को 8 बातें उनका ध्यान विशेष दें तो सत्य भाषण हो जाता है। मैंने इस पर विचार किया है कि सत्य भाषण केवल ये विचार कर मैं साक्षी बोलूंगा इतने मात्र से पालन करना कठिन होता है, तो ये भी एक विद्या है, सत्संग करना भी एक विद्या है, ये मामूली बात नहीं है। सत्संग करना बहुत कम आदमियों का आता है, ऐसे सत्य भाषण करना विद्या है, विश्वास को सीखना चाहिए, तो सत्य भाषण की बहुत मेहनत है। सत्य लेके अमृत को मानस हूं, एक सत्य के कारण से अमृता की प्राप्ति हो जाती है। छोटा सा झूठ बोल गया सब का सब गया, हिसाब किया जाए 5-7-10 अंक है उसका हिसाब किया जाए, उसमें 1 अंक की भूल हो जाए एक जगह सब हिसाब लग दी और कहीं नहीं एक हिरदा है। पहला पता समझा वो होता है 29 और अपने मान लिया 30, अब बिंदी लगा दी 3 लाइन में गिर लिया, ऐसे गिरते गिरते फिर जाओगे तो सब रद्दी एक ही नंबर भी मिलेगा। कैसा एक भूल है उस एक भूल काफी है। रद्दी बोले
सत्यनारायण जी बोल रहे हैं कि सत्संग की विद्या तो बताओ।
सत्संग की विद्या है कि सत्संग सुनो तो ध्यान पूर्वक सुनो, मन लगा करके सुनो और बीच बीच याद करो कि हम ये बातें औरों को भी सुना सकते हैं और इनके अनुसार अब जीवन बनाएंगे, हमारा जीवन अब ऐसा ही बनेगा जैसा सत्संग में सुनते हैं वैसे ही अनुष्ठान करेंगे। उसमें कोई भूल रह जाए तो फिर पूछ लो और पूछ करके उसको ठीक समझ लो, समझ करके अपना अपना जीवन वैसे ही बनाना है। वैसा ही श्रुति पारायण सुबह कहा था, सुने की पारायण हो जाए, परम आयन परम स्थान हमारा जो सुना है उसके अनुसार हो तो कल्याण हो जाता है। सत्संग में कुसंग होता है, सत्संग में सत्संग होता है, सत्संग में कुसंग भी होता है। सदगुण सदाचारों का वर्णन हो तब तो सुन लेंगे तो ये तो मैं हूं ऐसा तो मैं हूं, दुर्गुण दुराचारों का एक दूसरे यानी वो झूठ वो बोलता है, कपट वो करता है, ठगी वो करता है, ये दुर्गुण दुराचारों दूसरों को सामने रखे, अच्छे अच्छे गुण अच्छी बात है वो अपनी तरफ चले, ये सत्संग में कुसंग होता है। दूसरों का संग करता है, दुष्टता का चिंतन करता है, करता है सत्संग पर करता है कुसंग, बैठा सत्संग में इस तरह से अपने अभिमान को बढ़ाता है, अपने को असली अच्छाई समझता है। ये जो गुण क्या दया क्षमा उदारता ही तो मेरे में है। एक झूठ कबर जासत नहीं करते, नहीं बेईमानी करते, हम बड़े ईमानदार है। ये सत्संग कुसुम है। हमारे सहपाठी थे चंद्रराम जी, वो प्रथम प्रश्न दे चुके। उसके बाद बोले कि अब मेरे को पढ़ना आया है, मैं पढ़ना जानता नहीं, पढ़ता हूँ तो निश्चय की तरफ दृष्टि रख करके महाराज क्या कह रहे हैं उनको ठीक तरह से सुनना समझना है तो पढ़ना सीख गया। नहीं तो पढ़ते रहते हैं भूलते रहते, पढ़ते रहते भूलते रहते, तो जितना पढ़ गया उसको ठीक याद करना है तो पढ़ना आ गया। अरे पर्याग भूल गया, पर्याग भूल गया तो पढ़ना आया नहीं। ऐसे सत्संग याद ही नहीं है। सत्संग अच्छी याद बहुत अच्छी बताओ, खुद तो याद नहीं है। सत्संग बहुत अच्छा हुआ, सत्संग क्या अच्छा हुआ, याद नहीं, अच्छी बात हो याद मैंने बोलो तो सत्संग आया करना आया नहीं। कौन बैठ गए सत्संग में, सत्संग अलग अलग होता है। सत्चर्चा होती है, सत्चिंतन होता है, सद्गुण होते हैं, सत्चिंतन हो सत्संग होता है। सत्संग मानो भगवान के साथ प्रेम, सुनने से प्रेम भगवान में बढ़ना चाहिए, आकर्षण भगवान के पर होना चाहिए, तब सत्संग है। तो बातें सीख ली और कह दी और सुन ली, ये व्याख्यान हो सकता है, सत्संग नहीं। व्याख्यान होते हैं, कथा होती है, ये होता अच्छा है, ये भी कल्याण करने वाला है, पर सत्संग तो तत्काल कल्याण करता है। तत्काल सलाम प्रसंग आदमी बीज समझ दो, बड़ी प्रसन्नता होती है।